नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी के एक अहम अध्याय पर चर्चा करेंगे।
जी।
अध्याय का नाम है अनीति को स्वीकार तो नहीं ही किया जाए। कोशिश रहेगी कि इस अध्याय का जो मूल संदेश है उसे समझें।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्या कहेंगे अहम विषय है जिस पर वंदनीय माता जी ने प्रकाश डाला है।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वंदनीय माता जी किस मुख्य विचार पर यहाँ जोर दे रही हैं? आमतौर पर तो हम अनीति करने वाले को ही दोषी मानते हैं ना?
हाँ, सामान्यतः तो यही सोच है, लेकिन यहाँ पुस्तक में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अनीति करने वाले की निंदा तो ठीक है, पर असल में एक सत्य ये भी है कि दुर्बलता दुष्टता की जननी है।
अच्छा, दुर्बलता दुष्टता की जननी, ये तो सोचने वाली बात है।
मतलब ये कि अन्याय या अनीति वो तभी पनप सकती है, तभी फल फूल सकती है, जब उसे सहने वाली कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी वहां मौजूद हो। तो पुस्तक साफ कहती है कि दोष केवल अनीति करने वाले का नहीं है, उसका भी है जो अनीति के सामने झुक जाता है, उसे स्वीकार कर लेता है, चाहे चुपचाप ही सही।
तो आप कह रहे हैं कि जब तक ये दुर्बलता रहेगी, कोई ना कोई उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा ही करेगा।
हाँ बिल्कुल, पुस्तक में इसे ऐसे समझाया है जैसे जैसे गंदगी होगी तो बदबू आएगी ही, वैसे ही जहां दुर्बलता होगी वहां दुष्टता के पनपने का अवसर बन ही जाता है, वो उसे आकर्षित करती है एक तरह से।
ये तो एक बिल्कुल अलग नजरिया है अन्याय को देखने का।
हाँ, और यहीं पर प्रतिरोध की बात आती है। वंदनीय माता जी कहती हैं कि अनीति का जब प्रतिरोध होता है, विरोध होता है, तभी दुष्टता की असली ताकत, उसकी जो क्या कहते हैं कलई है, वो खुल जाती है।
अच्छा, मतलब प्रतिरोध से ही असलियत सामने आती है।
जी, और ये भी कहा है कि प्रतिरोध में कष्ट हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, पर हार नहीं होती, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते नानरतम।
हाँ, सत्यमेव जयते।
शर्त बस इतनी है कि अन्याय को अस्वीकार करने का साहस, वो हिम्मत बनी रहनी चाहिए।
ये साहस वाली बात वंदनीय माता जी ने इसे पुरुषों और स्त्रियों के संदर्भ में भी उठाया है, क्योंकि पुस्तक का नाम तो नारी पर ही है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वंदनीय माता जी बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि ईश्वर ने पुरुष और नारी दोनों को मनुष्य जाति का अभिन्न अंग बनाया है, दोनों समान हैं।
हाँ,
और उनके मानवीय अधिकार भी पूरी तरह समान हैं। न्याय की नजर में देखें तो कर्तव्य और अधिकार दोनों बराबर हैं।
तो फिर ये श्रेष्ठता या वो वाली बात कहाँ से आती है?
वो आपसी सहयोग और सद्भावना की बात है। एक दूसरे को सम्मान देना, श्रेष्ठ मानना, ये तो शालीनता है, अच्छी बात है, लेकिन इससे जो समानता का मूल सिद्धांत है ना, वो कम नहीं होता, वो बना रहता है।
अच्छा, तो फिर ये जो दुर्बलता का विचार है वो स्त्री के संदर्भ में कैसे जुड़ गया, जैसा कि पुस्तक में इशारा है?
हाँ, यहीं पर वो बात आती है जिसे समझने की जरूरत है। पुस्तक के अनुसार जो शारीरिक क्षमता में कुछ भिन्नता है, जिसे अक्सर प्रजनन जैसे महत्वपूर्ण बहुत अहम उत्तरदायित्व से जोड़ा जाता है, उसे समाज ने शायद गलती से दुर्बलता समझ लिया, उसे कमजोरी मान लिया गया। और इसी गलत समझ ने, जैसा कि इस अध्याय में तर्क दिया गया है, दुष्टता को, अन्याय को अवसर दे दिया, उसे मौका मिल गया।
लेकिन वंदनीय माता जी इस पर सवाल उठाती हैं, है ना?
हाँ, सीधा सवाल, बहुत तीखा सवाल है। वो कहती हैं, चलो मान भी लें कि दुर्बलता है, तो वो दुर्बलता भी निर्दोष नहीं है। सवाल ये है कि उस दुर्बलता ने अनीति के आगे सिर क्यों झुकाया?
अच्छा, तो मतलब सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को दोष नहीं देना है, बल्कि अपने अंदर भी झांकना है, सुधार की बात है, जिसे शायद पुस्तक में परिमार्जन कहा गया है।
एकदम सही पकड़ा आपने, परिमार्जन यानी शुद्धि, सुधार, अपने आप को ठीक करना। संदेश ये है कि इंतजार मत करो कि अन्याय करने वाला कब सुधरेगा या कब अपनी पकड़ ढीली करेगा, बल्कि जिसे दुर्बल समझा या माना गया है, उसे खुद ही वो साहस जुटाना होगा, अपनी स्थिति का प्रायश्चित करना होगा, मतलब उस अन्याय भरी स्थिति को बदलने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा।
और इस सक्रियता के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या बताया गया है, क्या जरिया है?
सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत है न कहने का अधिकार, और वो कहने का साहस, अन्याय को अस्वीकार करना, उसको मानना नहीं,
न कहने का साहस।
जी, वंदनीय माता जी का निष्कर्ष बहुत साफ है और बहुत शक्तिशाली भी। वो कहती है कि अनीति को चुपचाप सहने में जो पीड़ा है, जो दर्द है,
हाँ,
वो उस संकट से कहीं ज्यादा भारी होता है, कहीं ज्यादा गहरा होता है जो प्रतिरोध करने में शायद सामने आए। प्रतिरोध का संकट तो शायद कुछ समय का हो, पर अन्याय सहने का बोझ वो बहुत भारी पड़ता है। उससे तो प्रतिरोध का संकट हल्का ही है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार क्या निकलता है, क्या मुख्य बात है जो हमें याद रखनी चाहिए?
देखिए, मेरे विचार विसार यही है कि अन्याय का सामना करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर साहस जगाना होगा, आंतरिक शक्ति।
हाँ, अंदरूनी हिम्मत।
बिल्कुल। और ये समझना होगा कि पुरुष और स्त्री मानवीय धरातल पर बिल्कुल समान हैं, उनके अधिकार समान हैं, और अन्याय को न कहने में, उसे अस्वीकार करने में ही असली ताकत है, असली गरिमा है।
सही कहा, ये वाकई एक गहरा और जरूरी संदेश है।
जी, और ये हमें एक सोचने के बिंदु पर भी छोड़ता है ना? ये पुस्तक, ये अध्याय हमें अन्याय का प्रतिरोध करने का साहस रखने को कहता है।
हाँ।
लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में, जहां अक्सर बड़े बड़े अन्याय नहीं होते पर छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर के अन्याय होते हैं,
हाँ,
पक्षपात होते हैं,
हाँ, होते हैं,
वहां पर ये प्रतिरोध या ये न कहने का अधिकार, इसे असल में व्यवहार में कैसे लाया जाए, ये शायद हम सभी के लिए सोचने का एक प्रश्न है।